ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಸಿಕೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತಗದಾದ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಶ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಏನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯಿನಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನು ಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ. ಪಾಂಚಾಕಲ್ಪಿತರೂಪೇಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸವಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ಹರ್ ಸಂಡೇ ಅಬ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೇ ಹೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸೇ ಔರ್ ಶಾಯದ್ ನವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೇ. ತೋ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಣಿ ಹೈ, ಜೈಸೆ ಹಮ ಹಮೇಶಾ ಸುನ್ತೆ ಆಯೇ ಹೈ. ತೋ ಭಗವಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೇ ಏಕ್ ಚೀಜ್ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಅಧಿಕ ಜೋರ್ ದೇತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಏಕ್ ಚೀಜ್ ಬಹುತ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಿಯ ಹೈ. ತೋ ಏಕ್ ಚೀಜ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾ ಜೋರ್ ದೇತೆ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಹಮೇಶಾ, ವೊ ಕಹತೆ ಹೈ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮತ್ ಭಕ್ತೋ. ಕೈ ಸ್ಥಾನೋ ಮೇ ವೊ ಹಮೇ ಪ್ರೇರಿತ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಈ ಸಂಸಾರ ಮೇ ತುಮೇ ಕುಚ್ ಬನ್ನಾ ಹೈ ತೋ ಕ್ಯಾ ಬನೋ, ಕ್ಯಾ ಬನೋ, ಭಕ್ತ ಬನೋ. ಹಮ ಸಬ್ ಅಪ್ನೇ ಜೀವನ ಮೇ ಬಹುತ್ ಕುಚ್ ಬನ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ. ತೋ ಹಮೇ ಕುಚ್ ಬನ್ನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕರ್ನಿ ಹೈ. तो भगवान कहते भव मद भक्तो नवे अध्याय में, और ऐसे उन्होंने शुरुआत में भी बोला, बीच में भी बोला, और आखिरी में जाते जाते गीता को एंड कर रहे थे अपने. हाँ, अमेजिंग उनका जो क्लास था. श्रोता कितने थे वहां? एक ही अर्जुन थे श्रोता, गंभीरता से जो सुन रहे थे. लेकिन भगवान जब जाते जाते फाइनली कहते हैं मनमना भव मत भक्तो मध्यान जी माम नमस्करो, और तुम मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, और ये जो ज्ञान है वो दूसरों का देने का प्रयास करो, इसका वितरण करोगे तो आप मुझे प्रिय बनोगे. तो भगवान भक्त बनने के लिए हमें प्रेरित करते हैं. इसलिए गीता के 12वें अध्याय में भक्त अष्टकम उन्होंने लिख दिया. लिख दिया मीन्स बोल दिया. भक्त अष्टकम 20 श्लोक है ना 12वें अध्याय में, जिसमें भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं. भक्त बनना है तो भक्त कैसे होना चाहिए, मेरा भक्त कैसे है, वो सारा वर्णन भगवान ने क्या किया, वो लक्षण गीता के 12वें अध्याय में बोल दिए. उसको भक्त अष्टकम बोलता है, बोला जाता है. तो भगवान हमें प्रेरित करते भक्त बनो, उस उनके गुणों का वर्णन करते हैं. और दूसरी चीज वो कहते हैं भक्त बनने का मतलब मेरी भक्ति करोगे तो क्या बनोगे, भक्त बनोगे. भक्ति नहीं करेंगे तो भक्त नहीं बन सकते. तो भक्ति क्या वस्तु है? भक्ति वो चीज है जो भगवान और भक्तों के बीच में जो प्रेममयी सेवा का आदान प्रदान है उसको क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं. कौन सी सेवा का आदान प्रदान? प्रेममय. केवल सेवा का नहीं, इस संसार में हम सेवा करते हैं तो उसमें स्वार्थ रखते हैं, भगवान कहते प्रेममय सेवा का आदान प्रदान ये भक्ति है, और वो भक्ति कैसे होनी चाहिए उसको कृष्ण कहते हैं गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में शायद। हाँ, अनन्य भाव कैसी भक्ति होनी चाहिए, अनन्य अनन्य भावना से युक्त भगवत भजन। तो ऐसी अनन्य भावना का भक्ति कृष्ण हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं। और कृष्ण किसी के वश में हो जाते हैं, कृष्ण किसी के लिए कुछ करना शुरू करते हैं, उस व्यक्ति के लिए जिसके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भावना की भक्ति हो, अन्यथा नहीं। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ये गीत में कहते हैं षडंग शरणागति है वे जहा तहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जिस व्यक्ति के अंदर 6 प्रकार की शरणागति है, मीन 100% जो भगवान को शरणागत है, कृष्णा उसी की प्रार्थना सुनते हैं, है कि नहीं। कोई हमसे बहुत घमंड से बात करते हैं, हम उसकी बात सुनते हैं। हाँ, कुछ कपट भावना रख के हमसे कुछ करवाना चाहता है तो हम भी अपने आप को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, रोक लेते हैं। वैसे ही कृष्ण है, कृष्ण भी देखते कि ये व्यक्ति कितना मेरे शरणागत है। भगवान ये नहीं देखते कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या है, आप जीवा से कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो। कुछ लोग होते ना, जीवा से कैसे बोलेंगे, मीठी बातें, लेकिन हृदय में क्या है, हाँ, बहुत शत्रुता का भाव है। तो भगवान सीधा देखते तो कहां देखते हैं, हृदय प्रांगण में, क्योंकि मन में जीवा में जो भी विचार है, बातें, जो भी सारे प्लान्स आते हैं वो कहां से आते हैं, हृदय से। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हृदय हाँ पूरे शरीर का क्या है, सेंटर है, जहां से सारी चीजें फ्लो होती हैं। वो बंद हो जाए तो सारी चीजें ब्लॉक। हाँ, तो इसलिए भगवान भी कहां देखते हैं, हृदय में देखते हैं। इसलिए हाँ भक्ति इज द अफेयर ऑफ हार्ट, ऐसे शास्त्र कहते हैं। भक्ति किस चीज का अफेयर है, हृदय का अफेयर है। तो ऐसे भगवत भक्ति का वर्णन भगवान करते हैं भगवद गीता में, और हम सबको प्रेरित करते हैं कि भक्त बनो, भक्ति करने से भक्त बनोगे। और भक्ति कहाँ होती है, भक्ति स्तु भगवत भक्ता संगे न परिजायते। जैसे भक्तों का संग करोगे उस प्रकार से भगवत भक्ति की भावना हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, क्योंकि भौतिक संसार में भी वही है। आप शराबी का एसोसिएशन रखते हो, संग रखते हो, तो न चाहते हुए भी आप अच्छा पियंकड़ बन जाते हो, वैसे ही है। तो भक्तों के संग में आते हम बारंबार, भक्तों के संग में आकर मिलकर भगवत भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम न चाहते हुए भी भक्त बन जाते हैं। हाँ, तो भक्त बनने का मतलब ही है भगवान का प्रिय बन जाना, क्योंकि संसार में दोनों चीजें हैं। ये स्वभाव है आत्मा का, हम अपने जीवन में चाहते कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसा हो जो मुझसे इतना प्रेम करे, कितना प्रेम करे, आकाश के तारे तोड़ के ला दे, है कि नहीं। लगता नहीं कि हमें कोई व्यक्ति होना चाहिए संसार में जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम रखता हो, और हम भी ढूंढते हैं किसी से मैं भी प्रेम करूं, है ना। तो ये चीज हमारे जीवन में हम अलग नहीं कर सकते। इवन एक कुत्ता भी ये चाहता है, कुत्ते को थोड़ा सा बिस्कुट खिला दो। हाँ, जैसे एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने सोचा कि बचपन से ही वो सुख की कामना कर रहा था, और क्योंकि हमारा प्रेम का जो स्थान है वो हमेशा बदलता है। हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो सबसे अधिक प्रेम हम माँ से करने लगते हैं। जब दूध जब तक पीते तब तक माँ से प्रेम, गाय जब तक दूध देती है तब तक उसको चारा खिलाते हैं, नहीं तो फिर उसको बाहर कसाई को बेच देते हैं। गांव में आप देखेंगे जब तक माँ से दूध पीते हैं तब तक माँ से बहुत प्रेम, और जब भी क्या थोड़े से दांत आने लगते हैं तो पिताजी ऑफिस से आते तो खिलौने और कुछ मिठाइयां लेके आते हैं। बच्चा माँ की छोड़कर किसकी ओर भागता है, पिताजी पिताजी दरवाजे में भागेगा। अभी ज्यादा प्रेम पिता से करने लगा। फिर जब स्कूल जाने लगता है तो माता पिता चिल्लाते, अरे घर आ जा, खाने का समय हो गया है। उसको फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, मित्रों के साथ घूमता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर कॉलेज के फ्रेंड अच्छे लगने लगते। फिर थोड़ा सा बड़ा कुछ डिग्री वगैरह हासिल करता है तो जीवन में पत्नी आ जाती है। फिर किससे प्रेम करने लगता है? पत्नी से। पहले माता कुछ, माता पिता सब कुछ थे। माँ आपके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पिताजी आपकी सेवा के लिए तो मेरा जीवन है। मैं आज एक चीज पढ़ रहा था जिसमें वर्णन आ रहा था एक माँ का, तो वो माँ कह रहे थे, जब उस माता पिता थे एक एक व्यक्ति के, उसके पिताजी गुजर गए तो माता को उसने कहा रखा, ओल्ड एज होम में रखा। तो जब एक लेटर आया ओल्ड एज होम से कि माँ आपकी मरने वाली है, तो वो व्यक्ति जो बाय उसका बेटा था वो दौड़ते हुए भाग के गया वहां। वहां जब गया तो माँ तो आखिरी सांसें ले रही थी, तो माँ आखिरी सांसें ले रही थी। पूछे बेटा, बेटा ने पूछा क्या माँ आपकी क्या आखिरी इच्छा है? माँ कहती है कि इस ओल्ड एज होम में ना इतने दिन रहे, फैन नहीं है, आप क्या करो यहाँ फैन लगा दो। तो बेटे ने कहा, तुम कैसी आप बिना फैन के रही, पहले ही बता देती। उसने कहा कि मैं तो सहन कर लिया, लेकिन आगे चल के तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें यहाँ भेजेंगे तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये माँ का हृदय है। तो ऐसे ही देखा जाए, हम अपने जीवन में कोई किसी को सबसे बहुत प्रिय बनाते हैं, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे प्रेम हम चाहते, क्योंकि हर एक व्यक्ति इमोशंस चाहता है। क्योंकि स्त्री एक पुरुष से इमोशंस चाहती है और एक पुरुष एक स्त्री से एक्सपेक्ट करता है, लेकिन दोनों के पास उतनी मात्रा में नहीं है। इसलिए तो प्रॉब्लम है जगत में, सब कुछ होकर भी सुख नहीं है, अशांति है, डाइवर्स है, लड़ाई झगड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम इमोशंस खरीदना चाहते हैं, लेकिन जिनसे खरीदना चाहते हैं उस व्यक्ति के पास उतने नहीं है। हाँ, ये भंडार कौन है? कृष्ण है। तो वैसे ही जब व्यक्ति बड़ा होता है तो पत्नी से प्रेम करने लगता है, तब तक प्रेम करता है एक दो साल, शादी के एक दो साल सब बहुत अधिक प्रेम करते, उसके लिए तारे क्या चांद भी लाने लाकर देने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे पहला बच्चा होता है ना घर में आता है, पत्नी से प्रेम कम होने लगता है। प्रेम कहाँ चला जाता है? बच्चे। और पत्नी का भी प्रेम किस पे चला जाता है? बच्चे पर। अभी वो पति का इतना ध्यान नहीं रखती पहले जैसे, अभी वो ऑर्डर देना शुरू करती है। तो फिर बच्चा बड़ा होने लगता है, वो बच्चे पर प्रेम करते दोनों मिलकर। हाँ देखो, कहाँ कहाँ से हम प्रेम करते शुरू किया था। अल्टीमेटली हम प्रेम करना चाहते हैं, आत्मा का स्वभाव है। तो फिर वो जब प्रेम करने लगते हैं दोनों पति पत्नी अपने पुत्र से, लेकिन पुत्र के साथ वही है जो इनके जीवन में बचपन से हुआ था, वो भी किससे प्रेम करना शुरू करता है? बच्चों से। हाँ, बड़ा बड़ा होता है, फाइनली वही बेटा जिनसे प्रेम करते हैं वो विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं। हमें कितनी चिंता है, ये पागलपन है एक्चुअली। कभी कभी मुझे लगता है हम सोचते हैं मेरे बच्चों को ना विदेश में सेटल कर देते हैं, लेकिन इनका लाइफ, माता पिता का लाइफ इंडिया में क्या होता है? सबसे अधिक दुखी। जिस सुख की कामना के लिए उन्होंने उनको बड़ा किया और उनको चाहा थी कि बुढ़ापे में हमारे नजदीक रहे, वही माता पिता को सुख है। माता पिता को धन दौलत बड़े घर से सुख नहीं है, बच्चे हो पोते हो खेले यही उनके लिए आनंद है। हाँ, लेकिन वो दूर, हम जैसे वो और उनको ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, हर वो लोग विदेश में रहने लगते हैं। जैसे एक पिता का, अभी तो माता का स्टोरी बताया, अभी किसका? पिताजी का। पिताजी एक की नई नई शादी हो गई, एक बच्चा हो गया और पिताजी वृद्ध हो गए थे। पिताजी को बहुत खांसी आते थे। क्या आते थे? खांस खांस के, तो खांसी आते रहते थे। पत्नी ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत खांसते रहते, घर में आतंक मचा दिया है। हाँ, मुझे सहा नहीं जा रहा है। तो अभी टेबल पर बैठे थे एक दिन, डाइनिंग टेबल पर प्रसाद लेने के लिए, भोजन करने के लिए, तो वो खांसते रह गए। पत्नी को तो इतना गुस्सा आया, कल पिताजी रहेगा जैसे प्रभुपाद की पत्नी ने कहा ना, टी और मी, फैसला करो, चाय। प्रभुपाद ने कहा चाय चाहिए या मैं चाहिए, पति चाहिए। उनकी पत्नी ने क्या बोला, चाय चाहिए मुझे। प्रभुपद 56 साल के आयु थे, निकल गए वनवासप्रस्थ, झांसी चले गए, वापस आए नहीं। तो वैसे ही पत्नी ने इनको बोला कि देखिए आपके पिता बहुत घासते रहते हैं, मैं इसलिए शादी आपसे की है, कुछ सुख चैन है के लिए लाइफ में। तो जैसे ये बोला तो इसको भी लगा कुछ तो करना पड़ेगा, पत्नी को रोको या पिता को रोको। तो फिर इसने सोचा कल ही फैसला करता हूं। अंतिम पिताजी को कहा, पिताजी आपकी बैग पैक कीजिए, कल हम टूर में चलते हैं। पिताजी को लिया गाड़ी में, कार में डाला, दिवाली में नई नई कार खरीदी थी, और इतना लंबा जर्नी करते हुए कि जंगल के उधर चला गया और पिताजी को कहा कि आबा पुत्री बैग लेकर मुझे क्या करना है, वापस जाना है। झाड़ियों के बीच में खड़ी कर दी गाड़ी, पिताजी को बैग उठाकर बाहर किया, और पिताजी बैग उठाया, उन्होंने दुखी नहीं थे, जोर जोर से हंसने लगे, और हंसते हुए बेटे को परेशानी हो गई, अरे पिताजी को तो रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। कहते हैं पिताजी, पुत्र ने पूछा, बेटा पुत्र ने पूछा, पिताजी आप क्यों इतना हंस रहे हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं भी जब तुम्हारी एज का था ना, तो मैंने भी अपने पिता को यहाँ ही छोड़ा था। तो कहने का तात्पर्य है, क्योंकि ये संसार बहुत हमें भगाता है, बहुत रुलाता है, इसलिए इस जगत को कैसे देखना चाहिए, ज्ञान की आंखों से। इसलिए कृष्ण गीता में कहते चश्मा पहनना ही है। तो हम तो ये ढूंढते ना कौन सा ब्रांड है। मैं चश्मा बनाने जाने गया था बेचने, तो पूछा तो वो सारे ब्रांड्स के नाम लेने लगे, शीशा ये है, उसमें वो है। मैंने कहा ऑलरेडी गीता में कृष्ण कहते एक चश्मा पहन लो, कौन सा, ज्ञान का, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, कैसे देखो इस संसार को, ज्ञान की आंखों से देखो। यही तो अंतर है एक विद्वान या भगवान के जो महान भक्त हैं उनकी दृष्टि में और एक सर्वसाधारण व्यक्ति के दृष्टि में, किस प्रकार से इस भौतिक जगत को हमें देखना चाहिए। हाँ, वो भगवान से संबंधित देखता है और ये भी देखता है कि ये जगत मेरे रहने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन एक भौतिकतावादी अज्ञानी व्यक्ति है वो इस जगत में एक कदम कदम पर देखता है कि ये तो जगत मेरे भोग के लिए बनाया है। किस चीज के लिए बनाया है, एंजॉय करने के लिए, भोग के लिए। लेकिन भक्त देखते हैं तो रोग के लिए बनाया गया है ना। तो इस प्रकार से पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, तो वो पिता जब बेटों को सेटल करता है और वो देखता है कि सारे पंछी उड़ के चले गए, हम दो ही रहे, पहले तो हम दो और हमारे दो, अभी हम दो ही रह गए, दो तो चले गए। फिर ये सोचता है एक व्यक्ति, और पत्नी भी शरीर त्याग ली, अभी अकेला बूढ़ा व्यक्ति रह गया। और ऐसे नहीं कि हम बूढ़े नहीं होंगे, हम सबको क्या होना है, बूढ़ा होना ही है, चाहे हम जितने मर्जी अपने आप को अहंकार के कारण घोषित करें मैं बड़ा राजा हूँ, हाँ स्वामी हूँ। तो वो व्यक्ति देखा कि बच्चे भी कहाँ सेटल हो गए, पत्नी भी शरीर छोड़ के चली गई, अकेले वो था। ऐसी चिंता में जाते जाते इतना हृदय उसका रो रहा था, इतना सबसे मैंने प्रेम किया, अपना जी निछावर कर दिया। फिर ऐसे सोचते सोचते वापस आ रहा था घर में, तो उसने ब्रिटानिया के बिस्किट्स खरीदे, कौन से, हाँ, और खरीदे तो देखा एक कुत्ता जा रहा था, और कुत्ता जब जा रहा था देखा वो कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ गया है। उसने सोचा संसार में इतना मैंने सबके लिए किया, वो मेरे पीछे आया नहीं, सब मुझसे दूर चले गए। बिस्किट्स निकाले, कुत्ते को खिलाए, दो तीन बिस्किट क्या खिलाए थे तो कुत्ता दुम हिला के उसके पीछे आगे घूमने लगा। घर में गया तो कुत्ता उनके आसपास घूम रहा है, तो उसका जीवन किसके साथ रह गया, केवल कुत्ते के साथ। और वो सोचने लगा ये संसार ऐसा है कि जिनके लिए जितना मर्जी करो उतना वो व्यक्ति के लिए कमी है, और हमेशा व्यक्ति की आशाएं बलवती होती है। इसलिए ये संसार में हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, किसी चीज से हमें पूर्ण प्रेम या आनंद की भावना नहीं मिल सकती। इसलिए तो व्यक्ति चेंज करता रहता लाइफ में, सब चीजें, कार चेंज करेगा, मोबाइल चेंज करेगा, है ना? क्या क्या चेंज करते हैं? इतनी सारी चीजें, घर चेंज कर, कितनी चीजें। एंजॉयमेंट मीन्स क्या है इस भौतिक जगत में? चेंज करना, बदलते रहना। अपने जीवन में हम व्यक्ति को भी बदल देते हैं, नहीं, व्यक्ति को भी बदल देते हैं। तो ये संसार का नियम है, क्योंकि सारे संबंध क्या है? स्वार्थ पर टिके हुए हैं। इसलिए मुझे, मैं बीच में उज्जैन गया था कुछ महीने पहले, तो वहां भर्तृहरि का गुफा में गया था। हाँ, किंग राजा थे ना भर्तृहरि, जिनका समाधि मथुरा में भी है, आप जाते हो तो। वैसे ही वहां कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट किए, तो राजा भर्तृहरि के बारे में जाना थोड़ा, कि वो बड़े वैरागी थे। तो वो किंग कैसे वैरागी आए, उन्होंने तो तीन चीजें लिखी थी। एक लिखा था सबसे पहले श्रृंगार शतक, कौन सा शतक? 100 श्लोक लिख दिए। किसके सौंदर्य पर? अपने पत्नी के सौंदर्य पर। उनकी पत्नी थी छोटी रानी पिंगला, इतना प्रेम। महारानी पिंगला कहेगी, ओ राजा दिन है, तो वो कहेगी नहीं अभी रात है, तो राजा क्या कहेगा? यस माता, माता जी तो नहीं कहेगा, क्या कहेगा? सही है कि आप अभी क्या है? रात है। और रात हो और वो कहेगी कि दिन है, राजा जी कहेंगे हाँ, गर्दन हिलाएंगे कि आज भी दिन है। तो मतलब इतना आसक्त हो गया था, 24 घंटे उसी का स्मरण में मग्न था। राजा का छोटा भाई था विक्रमादित्य, जिनसे विक्रम संवत आता है ना, इंडियन कैलेंडर्स में फॉलो करते हैं, ये सारे ग्रेट पीपल थे। तो लेकिन हम सीख सकते हैं। तो वो राजा इतना प्रेम कर रहा था, तो उनके राज्य में एक ब्राह्मण था, बहुत निर्धन गरीब। उसने सोचा इतना जीवन हमारा गुजर रहा है, कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है ठीक से, पहनने के लिए नहीं है, तो उसने सोचा जंगल जाके थोड़ा तपस्या कर लेता हूं। तो जंगल जाके तपस्या करने गए, पति पत्नी इतनी तपस्या की कि पूरे पतले हो गए, और तो देवताओं को दया आई। देवता ने सोचा इतना तपस्या किया है, कुछ देते इसको अर्पित करते, तो क्या अर्पित करे? तो देवताओं ने उनको एक फल अर्पित किया, अमर फल। कौन सा फल? वो फल खाने से बुढ़ापा नहीं आ सकता। सोचो आपको प्रसाद में अभी हम अमर फल सर्व करें, तो हम क्या करेंगे बताइए? आपके हाथ में अमर फल आएगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सोचो, आपके घर में आप 5-6 लोग हैं, और एक कोई खाना है, एक कोई एक ही व्यक्ति खा सकता है, तभी उसका इफेक्ट है, तो आप क्या करेंगे? किसको देंगे? सोचिए, पिता के हाथ में आए तो किसको देगा? बच्चों को, पुत्र आदि। तो अमर फल में उसको मिला, उस ब्राह्मण को, उसने सोचा था अभी खा लेते हैं पति पत्नी मिलके, परमानेंट लंबी आयु होगी। पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा हे पति, हे पति देव, देखो पहले से इतनी आयु हम जी रहे हैं, निर्धन है, खाने के लिए नहीं है, वस्त्र नहीं, रहने के लिए स्थान नहीं है, अभी फल खा के और आयु लंबी हो जाएगी, लेकिन हम गरीब के गरीब ही रहेंगे, फल से पैसा आने वाला नहीं है। इसलिए कहते ना, ये जगत में कलयुग में सबसे बड़ा क्या है? रुपया है। तो उन्होंने कहा निर्धन ही बने रहेंगे, अच्छा है कि यह फल राजा को हम दे, राजा भर्तृहरि को, वो कुछ हमें धन दे, राजा खाए, अच्छा है वो सेवा में लगा रहेगा। ये गए ब्राह्मण, राजा अपने मंत्रालय में बैठा था। मंत्रालय मीन्स क्या? जहां मंत्र, जैसे दुखालय होता है ना, दुख का आलय स्थान। इसलिए हम अभी बीच में जाते हैं वहां मंत्रालय में जाते हैं ना प्रोग्राम इवेंट्स है, वहां रेल भवन, कृषि भवन, नॉर्थ ब्लॉक सब में वेंसडे प्रोग्राम होता है, तो वहां मंत्रालय है। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ मंत्र आलय, जहां मंत्र क्या होता है? निवास करता रहो। मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मंत्र आलय का मतलब जहां मंत्र हमेशा गूंजता रहे, लेकिन वह मंत्र नहीं गूंजते। हाँ, तो फिर ये गए, तो उस राजा को उन्होंने पकड़ाया वो फ्रूट, और राजा को कहा है तो अमर फल है। राजा के तो होश उड़ गए, आनंदित हो गए, जैसे फल हाथ में आया, उनको धन संपदा जैसे हाथ में आया, तुरंत उसको विचार आया। किसका आया होगा विचार? आप सब बुद्धिमान है, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट फास्ट है आप, क्योंकि ये स्वाभाविक है, हर एक व्यक्ति के साथ है। हमारा नेचर है कि जहां हमारी आसक्ति है वहां सारी चीजें फ्लो होने शुरू होती हैं, बहती हैं। जिस व्यक्ति ने हमारा हृदय चुरा लिया है, हमारा मन चुरा लिया है, हमारे विचार, जिससे हम आसक्त है, उसकी ओर ये तीनों चीजें भागती है हमारी। हमारा मन भी भागता है, हृदय भी भागता है और विचार भी भागते हैं। हाँ, उस राजा को फल हाथ में आया, उसको अपना विचार नहीं आया, किसका विचार आया? रानी का पिंगला। वो सहन नहीं कर सकता था, पिंगला को बोड़ी होना होगा। किसकी पिंगला है? कहता मेरी पिंगला है। वो बोड़ी हो जाएगी, वो सहने जा रहा था उसे, कहता मैं बूढ़ा होने के लिए तैयार हूं। ये भौतिक प्रेम का लक्षण है। और उसके लिए तो गया मंत्रालय, जल्दी बंद किया उन्होंने, क्योंकि अमर फल मिला था। तो गया अपने रानी पिंगला के पास, पिंगला के हाथों में समर्पित कर दिया, पिंगला ने भी ले लिया। और राजा चाह रहा था कि वह फल, उनको कहा कि आप मेरे सामने खाइए, पत्नी को बोला पिंगला ये देखो अमर फल है, आप इसको खाओगे कभी आप बूढ़ी नहीं होगी, यंग रहोगी, सुंदर रहोगी, मृत्यु से दूर रहोगी, तो आप मेरे सामने खाओ। तो भी बड़ी चतुर थी, उसने कहा महाराज ये तो इतना पवित्र फल है, यज्ञ आदि देवताओं के द्वारा प्राप्त हुआ है, ये तो गंगा स्नान करके खाना चाहिए। हाँ, अच्छे से स्नान आदि करे फिर उसको ग्रहण करें। तो ऐसे राजा ने पत्नी को तो ऑफर किया वो फल, फिर राजा अपने महल में जाके बैठा और फिर अपने कामकाज में व्यस्त हो गया दो चार दिन। फिर अचानक राजा ने एक दृश्य देखा, जब अपने कार्य में व्यस्त था मंत्रालय में, सारे सभागृह में, तो एक सुंदर सी नारी, सुंदर सी स्त्री आ गई, और उस स्त्री के हाथ वो आ गए महाराज के पास, उनके चरणों में गिरी और उन्होंने कहा हे राजा धीराज, आपके लिए मैं सुंदर सा फल लेके आये हूं। फल लेके आये हूं, ये अमर फल है, आप इसको खाइए, इससे आप अमर हो जाएंगे। भर्तृहरि किंग ने जब देखा वो फल, और वो वही फल था जो फल उन्होंने किसको दिया था? अपने रानी प्रियतमा को दिया था। और वो उनका चेहरा क्या 12 बज गए होंगे, पीला पड़ गया, वो टेंशन में आ गए, उनको सारी कथा समझ में आ गई। उन्होंने कहा सा चिंतयामि सततम् मयि सैव विरक्तः, वो कहने लगे कि जिसका मैं सदैव चिंतन करता था वो भी मुझसे उस वैराग्य उसको उसने ले लिया है। तो क्या हुआ था, हम अंदर घुसते थोड़ा सा, कहां घुसेंगे, हम रानी के पास चलते। तो रानी ने जब ये फ्रूट हाथ में लिया, राजा को तो भगाया बहाना बनाकर, राजा जी स्नान करके खाती हूँ। हाँ, उसने बोला था स्नान करके खाती हूँ आराम से। तो उसने जैसे उसके हाथ में आया, उसको भी किसी और का स्मरण हो आया, क्योंकि वो रानी किससे प्रेम रखती थी, उनके वहां जो घोड़ों की देखभाल करने वाला दरोगा है उससे प्रीति रखती थी। और उन्होंने सोचा कि मैं उसको खिलाऊंगे तो मेरे लिए लाभ होगा। उसको बुलाया इमरजेंसी और उसके हाथ में पकड़ा दिया, और उसने वो भी अत्यधिक चतुर था, तो उसने जैसे उसके हाथ में आया, रानी ने कहा आप मेरे सामने खाइए, उसने बोला था कि गंगा स्नान करके खा लेता हूं, लेकिन वो फल वो ले गया, फल लिया तो हाथ में लेते ही किसका स्मरण हो आया, एक वेश्या का, जिससे वो प्रेम रखता था। उसने सोचा मेरी वो प्रिया इसको खाएगी तो वृद्ध नहीं होगी, उस वेश्या के पास वो अमर फल जाता है। और जब वो उस वेश्या के पास जाता है, वो सोचती है मेरा जीवन इतना घृणित है, क्या लाभ है इसे लंबे आयु का, बेस्ट है ये फल किसके पास जाना चाहिए, राजा के पास। तो मतलब भौतिक जगत में हम हमेशा ढूंढते हैं अत्यधिक प्रेम रखने वाले व्यक्ति को, जो हमसे इतना प्रेम करे, और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं हम किससे प्रेम करना चाहते हैं, और उतनी मात्रा में प्रेम अपने जीवन में हम चाह करते हैं। लेकिन ये वास्तविकता है भौतिक जगत की। इस जगत में वास्तविक प्रेम नहीं है, इस जगत में क्या है, काम है, लस्ट है। इसलिए है चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि इस जगत में दिखने वाला जो प्रेम है वो स्वार्थमय है, उसके पीछे काम छुपा हुआ है, भौतिक भोग की इच्छा छुपी हुई है, स्वार्थ छुपा हुआ है। इस संसार में प्रेम दिखाई देता है, शास्त्र कहते हैं वो थोड़ा सा है, रियल प्रेम वो किसमें दिखता है, एक माँ का अपने बच्चे के प्रति, यही एक शुद्ध प्रेम है इस संसार में, और वो भी कितना थोड़ा मात्रा में दिखता है, अन्यथा नहीं। आज हम बच्चों को बड़ा क्यों करते हैं, बुढ़ापे में काम आ जाए, वो तो चिंता अपनी है, बच्चे क्या इंस्ट्रूमेंट बने, लेकिन अनन्य भावना है नहीं है। सब कुछ अल्टीमेटली व्यक्ति किसके लिए कर रहा है, स्वयं के लिए। ये तो दिखावा है कि मैं बच्चों के लिए इतना कर रहा हूं, देश के लिए उतना कर रहा हूं, समाज के लिए कर रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है, मैं अपने लिए कर रहा हूं। लेकिन अपने लिए कर भी रहा है तो क्या कर रहा है व्यक्ति, केवल भौतिक अरेंजमेंट कर रहा है जो उसके न चाहते हुए भी छूटने वाले है उसके हाथ से। तो हमें कुछ करना ही है अरेंजमेंट, तो आध्यात्मिक अरेंजमेंट करनी है। इसलिए कृष्ण हमेशा हमें इंस्पायर करते हैं कि बनो तो क्या बनो, भक्त बनो, क्योंकि भक्त बनने में ही हमारी कुशलता है, भक्त बनने में हमारे जीवन की सफलता है। इसलिए भगवान खुद आते बारंबार, दूसरा वो शास्त्र देते हैं, तीसरा अपने डिवोटीज देते हैं, चौथा अपना धाम देते हैं। इन सब चीजों के द्वारा भगवान चाहते कि वो भक्त बने, और भक्त बना जाता है केवल भक्ति करके। क्या करके, भक्ति करके। तो भक्ति करें तो कैसे भगवत भक्ति करनी चाहिए हमें, भगवत भक्ति करनी चाहिए जिसमें रिटर्न पाने की कुछ अभिलाषा ना हो। हम कुछ भी करते तो क्या चाहते हैं, इसके बदले में क्या, मैं सत्संग में जाऊंगा लेकिन उससे मुझे क्या मिलेगा, मैं ये सेवा करूंगा उसके पीछे मेवा क्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हम जन्माष्टमी में आएंगे, आप डोनेशन देंगे, क्या फैसिलिटी मिलेगी हमें, आपका लाइफ मेंबर बन जाएंगे इस फॉर्म का, लेकिन पहले पूछते हैं मेंबरशिप है आपकी, लाइफ मेंबरशिप में उसकी क्या फैसिलिटी क्या दे रहे हैं, तो भक्तों को बोलना पड़ता है। तो मतलब जीव हमेशा चाहता है कुछ चाहिए, तो ये तो बिजनेस है क्या, और बिजनेस में हमेशा घाटा ही रहता है भौतिक जगत में। घाटा क्या है, कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, कृष्ण के प्रति भगवत भावना जागृत नहीं होगी। इसलिए भक्ति की कृष्ण कामना करते, तो कौन सी भक्ति, ऐसे वैसे नहीं कि बस कुछ काम है नहीं, चलो थोड़ा सा मन को शांति देने के लिए चलते, नहीं। भक्ति मीन्स गंभीरता के साथ मुझे जंग में उतरना है। भगवत भक्ति एक जंग है जिसमें आपको क्या करना है, उतरना है और गंभीरता के साथ करना है, क्योंकि मृत्यु आपके सामने खड़ा है। मृत्यु कहाँ है, सामने है, बहुत नजदीक है। अभी मुझे कोई कह रहा था, हाँ हमारे डिवोटीज गए थे कल परसों ही किसी के अंतिम क्रिया के लिए, वो इतना बड़ा धनवान व्यक्ति है, मतलब हमें लगता है कि सारी सुविधा हो तो मुझे कोई बचाएगा। बत्रा हॉस्पिटल है ना, उनके जो पुत्र थे उनका देहांत हुआ था, सोचो वो मोरक्को गए थे घूमने, चलो फैमिली थोड़ा ये करते हैं, घूम के आते हैं, आनंद मनाते हैं, वहां गए हैं तो कुछ खाने में चीजें आ गई जिससे उनका एक लौता बेटा था, हाँ जिससे क्या हो गया, लो फूड पॉइजन हो गया, और वहां ही जब हॉस्पिटल में रखा और रूम में आया होटल में, तो हार्ट अटैक आकर मरा। जहां यहाँ क्या है, उनके पास हजारों डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है। तो लेकिन हम भी ऐसा अपने जीवन में भरोसा करते हैं, हम भी सोचते हैं कि मेरे पास भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, मैं मृत्यु से दूर रहूंगा, लेकिन नहीं, इसलिए किसी चीज के लिए अत्यधिक प्रयास करना चाहिए लाइफ में, तो वो है भक्त बनने के लिए। और भगवान कौन से भक्ति की कामना करते हैं? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं एक ही चीज में चाहता हूं मेरे भक्तों से जो मेरे भजन में लगा है, वो व्यक्ति एक चीज करे तो मैं उसका सारा भार अपने ऊपर लेता हूं। किसके ऊपर? अपने ऊपर। सोचो जो पुत्र है पिता की थोड़ी सी बात मान लेता है तो पुत्र का सारा भार कौन लेता है? पिता लेता है। वैसे भगवान कहते हैं एक चीज में चाहता हूं, अनन्या चिंतयन्तो माम, चिंतन करो मेरा, सेवा करो, भजन करो, लेकिन कैसा? अनन्य भावना से, जिसमें कोई छुपा हुआ हेतु नहीं हो। हमारी सारी भक्ति की भावना में छुपे हुए हेतु रहते हैं कि मैं सेवा करूंगा तो मेरा नाम भी आना चाहिए, मैं सबके सामने क्या होना चाहिए, सब मेरी प्रशंसा भी करें, तब भगवान आपकी सेवा करना अच्छा लगता है। जब हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट मान सम्मान आदि नहीं मिलता, कोई हमें पूछता नहीं ठीक से, तो हमें लगता है भगवान की भक्ति ना अच्छी नहीं है। तो ये सब हेतु होंगे तो हम भक्ति करके भी आनंदित नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम, चिंतन कैसा करो? अनन्य भावना से। और अनन्य भावना को कहा जाता है कृष्ण सुखार्थ भजन। अनन्य भक्ति को कहते कृष्ण के सुख के लिए सेवा करना, भक्ति करना, बस मेरे अपने अपने सुख के लिए नहीं। अभी हम जब भी करते तो किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? अपने लिए। भगवान को प्रणाम भी करते तो किसके लिए? अपने लिए। घर में भोजन भी बनाते तो किसके लिए? अपने लिए। तो कृष्ण के सुख की कहां चिंता है? वृंदावन की गोपियां सर्वोत्कृष्ट भक्त है, वृंदावन के सखागण, वृंदावन के निवासी जो भी है वो भगवान के टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं। प्रभुपाद कहते क्यों वृंदावन वासी सबसे बड़े भक्त हैं? क्योंकि वो अपने जीवन में कृष्ण के अलावा किसी से अधिक प्रेम नहीं रखते, ये उनका क्वालिफिकेशन है। एक लेक्चर में प्रभुपाद लिखते हैं उनकी यही खासियत है वृंदावन वासियों की, अपने जीवन में वो कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, किसी और से नहीं। यही उनका एक क्वालिफिकेशन है, यही एक योग्यता है और यही वास्तव में भक्त की योग्यता है। अल्टीमेटली हमें तो ब्रजवासी बनना है। क्या बनना है? हाँ, फरीदाबाद वासी नहीं, हमें ब्रजवासी बनना है। तो ब्रजवासी तो तीन प्रकार के होते हैं। ब्रजवासी मतलब ब्रज में जाकर निवास करना। तो ब्रजवासी बनने के लिए वीजा चाहिए ना, जैसे आपको कहा जाने तो क्या चाहिए? वीजा चाहिए। और वीजा के लिए आपको इनविटेशन लेटर भी चाहिए होता है, तो उसके लिए वहां के जो महान भक्त हैं प्रभुपाद जैसे वो इनविटेशन लेटर भेजते हैं आपको। लेकिन वीजा कब आपको सैंक्शन होता है? जब एक योग्यता आपके पास हो। कौन सी योग्यता? अनन्य। कौन सी? अनन्य भावना की। मैं अभी कल गया था बांग्लादेश एम्बेसी में वीजा के लिए, तो उन्होंने कहा लेटर है क्या आपके पास? मैंने कहा मेरे पास कोई लेटर नहीं है, आप मुझे दे दो वीजा जाने के लिए, दिसंबर में तो जा सकता हूं। तो वैसे ही हमारे पास वो चाहिए, अनन्य भावना चाहिए। और भगवान कहते अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भावना से मेरी उपासना करता है तो मैं उसको वचन देता हूं, प्रॉमिस देता हूं। क्या प्रॉमिस है? तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये LIC वालों ने यहां से शब्द उठाए, दो कौन से? योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम मतलब आपकी जो आपके पास जो है उसकी रक्षा करते कृष्ण कहते मैं करूंगा, और आपकी जो आवश्यकता है वो मैं दूंगा। उसके लिए कितना भरोसा चाहिए, सोचो। ये भरोसा रखना किसके ऊपर? कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, कृष्ण ही मेरे पालन पोषण करेंगे। तो इसके लिए एक चीज की आवश्यकता है। भगवान कहते मैंने ये बोला है तो मैं खुद उस भक्त का वहन करता हूं, उसके लिए उसकी देखभाल करता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं अनन्य भावना का भजन। तो अनन्य भावना का भजन ही भगवान को आकृष्ट करता है। क्या? अनन्य भावना, और कोई भावना आकृष्ट नहीं करती। कृष्ण को कुछ कमी नहीं है कि कृष्ण हमसे हमारा डॉलर, रुपीस, हीरे जवाहरात, बड़ा मकान, गाड़ी, ये सब चाहेंगे तो कृष्ण आकर्षित होंगे? नहीं। कृष्ण किस चीज से आकर्षित होते हैं? आपके हृदय में उनके लिए अनन्य भावना हो। और ये अनन्य भावना वृंदावन वासियों में थी। तो वृंदावन वासी बनना ही हमारा उद्देश्य है। ब्रजवासी, तो ब्रजवासी तीन प्रकार के हैं। ब्रजवासी एक है जिसने ब्रज में जन्म लिया है, वृंदावन में। और ब्रजवासियों का एक नेचर है, खासियत है, ब्रजवासियों की जो स्वाभाविक प्रेम है वो कृष्ण के लिए है। और कृष्ण भी सर्वाधिक प्रेम किसी से करते हैं तो वृंदावन वासियों से। तो एक तो जिसने जन्म लिया है वो ब्रजवासी है ब्रज में। दूसरा जिसने दूर जन्म लिया है, ब्रज से बाहर, वृंदावन से बाहर, और वो वृंदावन में जाके निवास करता है, और वृंदावन के भक्त जिस भावना से भगवान की सेवा करते हैं उस भावना को अपने हृदय में धारण करता है, उस एटीट्यूड को, मनोवृत्ति, उस भावना को, वो एक क्या है? ब्रजवासी है। और तीसरा कौन है? जो वृंदावन में जन्म भी नहीं लिया और वृंदावन में निवास भी नहीं करता, लेकिन बाहर रहते हुए भी कौन सा मूड है उसका? वृंदावन वासियों का मूड है। वृंदावन वासियों की जैसी सेवा की भावना है, वृंदावन वासियों जैसे कृष्ण का चिंतन करने की वृत्ति है। तो इस प्रकार से अनन्य भाव के द्वारा भगवत भजन करना ही सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीन कविताम वा जगदेश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु कित्वे। हे नंद तनुज कृष्ण, मुझे धन आदि की कोई कामना नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मेरे बहुत फॉलोवर्स भी हो। मैं एक चीज चाहता हूं, चाहे संसार में मुझे बारंबार जन्म भी लेना पड़े, हे कृष्ण क्या दो मुझे? आपके चरणों की भक्ति दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए महान भक्तगण ये प्रार्थना करते, कृष्ण मुझे इंद्र का पद या ब्रह्मा का पोजीशन भी नहीं चाहिए। यदि उस पोजीशन प्राप्त करके आपका स्मरण ना हो, मुझे जन्म भी मिले तो कीड़े का भी जन्म मिले तो तैयार हो मैं कीड़ा बनने के लिए, लेकिन कहां दो कीड़े का जन्म? एक भक्त के घर के नाली में दो। क्यों? क्योंकि प्रसाद बनाते हैं तो उनका वचिष्ठ भगवान को अर्पित प्रसाद थोड़ा सा मुझे चखने को मिलेगा। और आपके भक्त घर में अपने परिवार के साथ कीर्तन आदि करते हैं वो सुनने को मिलेगा। हाँ, ये चाहता हूं मैं। तो अनन्य भावना भगवान के प्रति रखनी चाहिए, अन्यथा भगवान की ओर आगे बढ़ना असंभव है। कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करना ये इजी नहीं है। इजी से कपड़े धोते हैं ना, तो इतना इजी नहीं है, सफाई नहीं होगी मिश्र भक्ति से। क्या करना होगा? अनन्य भावना, जो भावना इन पांडवों के हृदय में थी। अनन्य भावना का मतलब ही है कि ना पूजी को देवी देवा, यही भक्ति परम कारण। वो किसी और की पूजा अर्चना नहीं करता कृष्ण के अलावा। कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम रज, माम नाइस ने बोला 33 कोटि शरणम रज। भगवान ने बोला है क्या? भगवान ने ये बोला भी माम एकम शरणम रज सर्वधर्मान परित्यज, किसी और देवता की हिम्मत नहीं हुई। कृष्ण आप अकेले ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम भी तो है यहाँ, होते ना, कोई चैलेंज देने वाला आया है क्या? नहीं। तो क्योंकि देवतागण सारे देवी देवता कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, दुर्गा देवी उनसे क्रोधित रहती है जो कृष्ण की सेवा नहीं करते। दुर्गा देवी कहते हैं उन व्यक्ति का मैं विनाश करती हूँ, उनके जीवन में उथल पुथल मचा देती हूँ, हाँ डिस्ट्रॉय करती हूँ। रिसेंटली भी पुराण में पढ़ रहा था, कहती है, क्योंकि वो कहती है मेरे पति शिवजी भी उनके लिए पागल है, कृष्ण के लिए। वो भी माला लेकर जप करते रहते शिव जी, और इसलिए वो दूर दूर रहते जंगलों में, यहां वहां शिव जी के मंदिर देखा, हमेशा एकांत स्थान में मिलेंगे। क्यों? वो भीड़ भड़क का अच्छा नहीं लगता हमको, डिस्टर्ब करने आते हैं। अभी तो हम अपने साथ ये भी लेके चलते हैं ना मोबाइल, हम चाहते हैं कोई मुझे डिस्टर्ब करे। सुबह से फोन नहीं आए, SMS नहीं आए, अपडेट नहीं किसी ने किया। हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में, कोई जान बुझ कर दे ना आप भैल और मुझे मार। तो भौतिक जीवन हम ऐसा बना के रखा है अपना, बल्कि जिससे क्या होगा, कृष्ण के स्मरण या भक्ति में बाधाएं होगी। इसलिए शिव जी क्यों जाके रहते हैं स्मशान इधर उधर, ये अंतरंग कारण है। कोई उनसे वो ना ले, डिस्टर्ब ना करे, कोई भी आता है ये ले लो भाग यहां से। जैसे कोई आपके पास इमरजेंसी काम होता है, कोई कुछ मांगने आता है, तो उसको थोड़ा आप सोचते तो कैसे भगाओ, जल्दी दे के भगा देते हैं। वैसे शिव जी, उनको आशुतोष कहा जाता है, जो तुरंत प्रसन्न होते हैं। कोई आता है उनके पास, उनको देखकर भगा देते, जाओ मुझे क्या करने दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए शिव जी को कहा जाता है, शिव जी के पांच मुख हैं। कितने मुख हैं? पंच मुख हैं। तो राधा रानी ने कृष्ण को एक बार पूछा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, ये शिव जी को पांच मुख क्यों है? तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने अच्छा लगा उनको, राधा रानी ने ऐसे पूछा। उन्होंने कहा, ये शिव जी ना भजन कर रहे थे, हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, तो उनकी दो इच्छाएं हो गई। एक तो उन्होंने जब मेरे सौंदर्य को देखा, कृष्ण कहते हैं, उन्होंने सोचा कृष्ण का इतना अनुपम सौंदर्य है, ये दो आंखें कम है, मेरे पास कितनी आंखें होनी चाहिए, और अधिक आंखें होनी चाहिए। और शिवजी ने सोचा कृष्ण का नाम, ये हरि नाम इतना स्वीट मधुर है, ये एक मुख क्यों है, मेरे पास और मुख चाहिए। तो ऐसा वो सोच रहे थे, तो कितने मुख आ गए उनको, और चार आ गए, पांच। तो आंखें कितनी हो गई? 10। मुख कितने हो गए? 5। मुखों से कृष्ण नाम उच्चारण कर रहे हैं। कान कितने हो गए? 10। सुन रहे कानों से, और आंखों से क्या कर रहे हैं? कृष्ण के सौंदर्य को देख रहे हैं। तो दुर्गा देवी कहती है, मेरे स्वामी शिव जी भी जिनका नाम कीर्तन करने के लिए, जिनकी सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इसलिए भी जहां भी धाम होगा, जहां भी विष्णु या कृष्णा टेम्पल होगा, वहां के आसपास आपको किसका मंदिर मिलेगा? अब इसका पैलेस दिल्ली टेम्पल जाइए, वहां पीछे एक छोटा सा मंदिर है, देखा रेडिश छोटा सा, वो किसका है? शिव जी का है। अब किसी भी धाम में चले जाओ, बद्रिक आश्रम जाओ, द्वारका जाओ, रामेश्वरम जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, शिव जी का क्या मिलेगा? वहां मंदिर के बाहर शिव जी का टेम्पल मिलेगा। इसलिए जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले शिव जी का स्थान आता है, भुवनेश्वर। क्या आता है? हाँ, वो जगन्नाथपुरी भगवान का धाम। धाम का मतलब है जहां भगवान निवास करते हैं, उस स्थान को धाम कहते हैं। और वहां निश्चित रूप से धाम की रक्षा करने के लिए शिव जी वहां बैठे रहते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जो धाम रक्षक है वो भुवनेश्वर लिंगराज महादेव है। और मथुरा में जाओगे, भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, तो मथुरा में कौन से शिव जी हैं? भूतेश्वर महादेव। वृंदावन आप जाते हो, हाँ वृंदावन में जाओगे तो वहां कौन से शिव जी आपको मिलेंगे? गोपेश्वर महादेव। हाँ काम्यवन में जाओगे तो वहां भी ऐसे पांच शिव जी वहां निवास करते हैं वृंदावन में। तो वो वृंदावन धाम को छोड़ना नहीं चाहते, सदैव कृष्ण की सेवा करना चाहते। इसलिए पार्वती देवी भी उनके संग में क्या करती है? कृष्ण का गुणगान करती है। तो इसी कारण से शास्त्र या कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि अनन्य भजन होना चाहिए, अनन्य भावना से कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करें। कुछ हम उनसे डिमांड ना करें, क्योंकि जितने भी हम बचपन से सीखते आए हैं वो एक ही प्रार्थना हमें आती है, कौन सी है? ओम जय जगदीश हरे। मैंने अपने जीवन में कभी गाई नहीं, और मुझे पता भी नहीं, वो याद भी नहीं है, लेकिन उसकी कुछ लाइनें लोग गाते हैं तो सुनने को मिलती है। हाँ, भगवान सब कुछ है तेरा, है ना एक लाइन उसमें, लेकिन चेकबुक मेरा, भगवान क्या सब कुछ तेरा, लेकिन चेकबुक किसका है, मेरा है। तो ये सारे वहां क्या है, कष्ट मिटे तन का, किसको याद है क्या है वो, एक लाइन है ना उसमें, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो ये सब चाहते हैं हम, भगवान तुम बेटर है टेम्पल में रहो, घर बताना गलती से, घर में कौन आ जाए, सुख संपत्ति, बस हमें कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं। इसको कहते हैं दुर्योधन की भावना, दुर्योधन मेंटालिटी। दुर्योधन ऐसे ही द्वारका गया, उन्होंने कहा भगवान द्वारका में रहो, गलती से मेरे इधर आना मत, लेकिन क्या भेजो मेरे पास, आपकी सेना। वही है भगवान के पास जाते, भगवान सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। लेकिन अर्जुन गए तो अर्जुन ने ये नहीं मांगा, अर्जुन ने क्या कहा, कृष्णा आप चाहिए हमें बस और नहीं, यही एक अनन्य भावना है। इसलिए हाँ हम भक्ति करते हैं तो भक्ति कौन से भक्ति से भगवान आकृष्ट होते हैं, जिसमें कोई हेतु ना, कोई छुपा हुआ एजेंडा ना, केवल एक निर्मल शुद्ध प्रेम हो जिसके द्वारा हम कृष्ण को सर करना चाहते हैं। फिर आप देखिए आध्यात्मिक जीवन में कितना प्रभुता से आगे बढ़ते हैं और कितना आपका हृदय सदैव आनंदित रहेगा। चाहे आप, आपके पास कुछ भी ना हो इस संसार का, लेकिन इस संसार के सबसे बड़े सुखी हाँ व्यक्ति कौन हो, आप होंगे। इसी कारण से कृष्ण गीता में हमेशा ये वार्निंग और रिक्वेस्ट करते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो अनन्य भावना का भजन ही कृष्ण को आकृष्ट करता है। तो ये अनन्य भावना कैसे लाई जा सकती है, अभी तो हम भक्ति में आते तो हमारे अंदर बहुत इच्छाएं हैं, हम आए ही इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। सबसे पहले तो हम दुखी हैं, हर व्यक्ति कौन है, दुखी है। तो चार प्रकार के लोग आते हैं भगवान की शरण में, जिसको जो सबसे दुखी है, जिसको पैसे चाहिए, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु एक है और ज्ञानी। तो हम कुछ ना कुछ कामना लेकर आते हैं भगवान की सेवा में या भक्ति में, लेकिन जब हम भगवत भक्ति में आकर भक्तों का संग करते हैं तो हमारी कामना क्या होने लगती है, शुद्ध होने लगती है। गुरु के भक्तों के आदेशों का पालन करने से ये जो भौतिक कामना है वो शुद्ध होती है और फिर हम शुद्ध भक्ति की ओर आकृष्ट होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव को कहां बैठने से मना कर दिया था, पिता की गोद में। अभी आजकल ये कहा जा सकता है कि सौतेले माँ ने कार में बैठने से मना कर दिया, गया कि मुझे मारुति 800 से उतार दिया मेरे सौतेले माँ ने, अभी कार लाऊंगा तो मर्सिडीज, मुझे कौन से चाहिए, मर्सिडीज ही, तो उसके लिए वो जाता है। तो वैसे ध्रुवा सबसे पहले रोते हुए, और ध्रुव क्षत्रिय थे, छोटा सा बच्चा था, लेकिन भागवत कहता है ऐसी सांसें ले रहा था जैसे कोई जिसको किसी सांप को आपने वो कर दिया है, क्या कह सकते हैं, सांप को आपने थोड़ा सा छेड़ दिया है, वैसे फुटकार रहे थे ध्रुव। गए अपनी माता के पास, माता को कहा भगवान कहाँ मिलते हैं, तो वो तो पूछा टाइम भी नहीं था, क्या हुआ बेटे, क्या कुछ नहीं, मुझे बताओ भगवान कहाँ मिलते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तो सुना है भगवान जंगलों में होते हैं। ये तो गए क्योंकि उनको पता है, उनको क्या चाहिए था, उनके पिता से भी बढ़कर राज्य चाहिए था, हाँ ये ब्रह्मा जी से भी बढ़कर, मतलब ब्रह्मा तो ये ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है, उनसे भी बढ़कर, एक प्रकार से वो आध्यात्मिक जगत की कामना कर रहे थे। पर उनके माता ने कहा कि भगवान तो जंगल में है, तो ये गए भगवान प्राप्ति करने के लिए, भगवान, लेकिन भगवान की ओर जा रहे, लेकिन क्या चाहिए उनको, बड़ा राज्य चाहिए। तो फिर भगवान ने देखा नहीं मेरी ओर आ रहा है, तो भगवान जब देखते कि कोई व्यक्ति उनकी ओर जा रहा है, उनको समझना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, जानना चाहता है, तो भगवान उसको गाइड करने के लिए अपने भक्त को भेजते हैं। नारद को भेजा, नारद जाओ वो छोटा सा बच्चा जंगल जा रहा है, उसको थोड़ा गाइड करो। तो नारद पहुंचे तो उन्होंने कहा, अरे ध्रुवा तुम तो राजकुमार हो, ये जंगल में कहाँ जा रहे हो, यहाँ जानवर है, कांटे हैं, भूखे रहोगे मरोगे, राजकुमार हो जाओ, ऐश आराम करो। कहता है ध्रुव, कहते हैं हाँ मुझे भगवान का पता बताना है तो बात करो, नहीं तो हट जाओ मेरे रास्ते से। नारद ने सोचा ये बच्चा कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये तो फिक्स है। हाँ तो उन्होंने कहा तुम क्या करो, मधुबन में जाओ, मथुरा में मधुबन है, आज भी वहां ध्रुव टीला है, जहाँ ध्रुव ने क्या की थी, तपस्या की थी, और उनको कहा भगवान नाम का उच्चारण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वहां यमुना के मिट्टी से भगवान का विग्रह बनाओ, उनकी सेवा करते हुए हरि नाम का उच्चारण करो। तो 6 महीने में ध्रुव ने ऐसी प्रगाढ़ तपस्या की नारद के आदेशों पर, तो भगवान स्वयं अवतरित हो गए गरुड़ के ऊपर, भगवान सामने आ गए। तो ये ध्रुव जब उनको देखता है बालक, तो देखते हैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोचो अभी यहाँ प्रेरणा धाम में भगवान अवतरित हो जाए आपके सामने, तो आप कुछ क्या क्या बोलने के लिए आपके पास, कुछ कोई बड़ा व्यक्ति आपके आप सामने खड़ा होता है तो हम थोड़ा सा हो जाते क्या बात करें, नहीं तो वैसे ही भगवान सामने आ जाए तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करो। तो भगवान के हाथ में 4 वस्तुएं होती है, शंख चक्र गदा पद्म। तो शंख ज्ञान का प्रतीक है, शंख उठाया और उनके सर में टच किया, जैसे टच किया तो ना ध्रुव के मुख से स्तुतियां निकलने लगी और एक प्रार्थना निकली बहुत सुंदर सुंदर। एक उन्होंने कहा काचम अति दिव्य रत्नम, वो कहते हैं कि हे कृष्णा मैं तो आपके पास आया था कांच के टुकड़े मांगने के लिए, लेकिन आपके पास तो हीरे मोती है। हाँ मतलब मैं भौतिक कामना लेकर आया था, तो मुझे ये सब राज्य वगैरह नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए बस। तो भगवान की भक्ति में लगते हैं भक्तों के संग में, गुरु और वैष्णव के आदेशों पर। तो फिर हमारे अंदर जितने ही कलमश क्यों ना हो, मिश्र भावना क्यों ना हो, हम शुद्ध हो जाते हैं और केवल भगवत भक्ति करते हैं कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, क्योंकि हमने प्रयास किया अपने जीवन में इस संसार में सबको प्रसन्न करने का, किया कि नहीं किया, बचपन से किसी को आप प्रसन्न कर पाए नहीं। इस संसार में भी हजारों उदाहरण आप पढ़ते हैं, कोई किसी को पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं कर पाया। तो हमें भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कोई मुझे संतुष्ट करे, नहीं, कृष्ण के अलावा पूर्ण कोई नहीं है। इसलिए ईशोपनिषद कहता है ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णा आप क्या हो, पूर्ण हो। तो इस संसार में हर कोई व्यक्ति अपूर्ण है, तो पूर्ण का हम आश्रय लेते हैं तो फिर हमारा जीवन भी पूर्ण हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में, प्रभुपाद कहते हैं मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि इस संसार में किसी चीज की कमी है तो वो कृष्ण भक्ति की कमी है, लोगों के जीवन में किसी चीज की कमी है तो उनके जीवन में भगवान की कमी है, बाकी सारी चीजें हो सकती है उनके पास लेकिन एक चीज नहीं है जिसके कारण उनका जीवन क्या है, दुखमय है, अशांत है, हाँ ऐसे महसूस होता है कुछ तो कमी है। हाँ तो इसलिए पूर्णता तभी आ सकती है जब हम भक्ति को अनन्य भावना से करते हैं, जैसे किसने किया, सुदामा, पोरबंदर जानते ना, सुदामा का वो विलेज है पोरबंदर। तो उनकी पत्नी ने भेजा कि आपके वो तो बड़े धनवान है मित्र, घर में तो खाने के लिए नहीं है। हाँ पत्नी ने कहा जाओ मिलो द्वारकाधीश कृष्ण को। तो पत्नी पीछे लगी है बहुत दिनों से हाथ धोकर, तो उन्होंने क्या सोचा चला ही जाता हूं लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सुदामा ने क्या कहा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। पत्नी गई पड़ोस में कुछ चावल वगैरह लेके आ गई। अभी पड़ोसी चावल देगा तो कैसे देगा, अच्छा देगा, हम किसी को कुछ देना भी चाहते तो जो हमारे काम की चीज नहीं है वो हम दान करने चलते हैं इस संसार में, नहीं किसी को कुछ गिफ्ट देना है तो जो हमारे यूज के लिए नहीं वो दे देते। तो ऐसे उनके पड़ोसी ने ऐसे चावल दिए जो इतने अच्छे नहीं थे, हमें उनकी पत्नी ने कहा कुछ नहीं तो ये चावल ले जाइए। सुदामा ने अपना पोटली बांधा, वॉक करते हुए द्वारका में पहुंच गए। कृष्णा जैसे देखते हैं अपने पुराने सांदीपनी मुनि का स्कूल है उज्जैन में जहां वो पढ़े थे वहां, तो इन्होंने देखा कि इतना पुराना मित्र आया है सुदामा, तो भगवान आनंदित हो गए। और भगवान सब जानते हैं नहीं क्यों आया है, तो भगवान के पास आया, इनकी कोई इच्छा नहीं थी सुदामा की, लेकिन किसने उनको भेजा था, पत्नी ने। तो उन्होंने भगवान ने उनको आसन में जहां वो बैठते वहां बिठाया, उनके चरण धोए, ब्राह्मण है कैसे उनका आतिथ्य होना चाहिए ये सारे चीजें सिखाते भगवान आदर्श गृहस्थ के रूप में। उनको रुक्मिणी सत्यभामा उनको फैन कर रही थी, चामर डुला रही थी और कई सारे व्यंजन खिलाए, उनको रेस्ट किया करवाया और फिर पूछा उनको, ऐसे नहीं कि गेट में आते बताइए क्या काम है। अभी मॉडर्न कल्चर क्या है, पहले तो दरवाजा बंद होता है बाहर का, उसके बाद घर के अंदर एक घर में घुसते तो वो जाली वाला बड़ा सा लोहे का दरवाजा, फिर उसके अंदर लकड़ का दरवाजा, उसमें भी एक छोटा सा होल होता है। हाँ तो मतलब कितनी सारी चीजें हैं, पहले कोई और वो भी कोई साधु आ जाए धोती कुर्ता पहन के तो उसकी खैरियत नहीं है, वहां से भगा देते हैं उसको सेफरन में, जैसे मैराथन में जाते हैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, कोई हमें ऑफिस के बाहर ऐसे वस्त्रों में देखता है, शिखा टंगी हुई तिलक लगाए, वो गार्ड को भगाओ इनको ये कहां से आ गए। हाँ तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ कृष्ण के दरवाजे खुले थे। हाँ तो जब ब्राह्मणों के लिए तो ये पहुंच गए तो भगवान ने इतना आतिथ्य सत्कार किया और उनको फिर पूछा क्या प्रयोजन है। सुदामा ने एक भी बात नहीं बताई कि मैं क्यों आया हूं, वो नहीं चाहते, उनकी इच्छा ही नहीं थी कृष्ण से मैं मांगू कुछ नहीं, और वैसे ही चले गए। वो जाते हुए ये नहीं सोचा कि मैं जा रहा हूं, अरे कृष्ण ने खाली हाथ भेज दिया, इतना द्वारका का ऐश्वर्य है, ऐसा कैसा मित्र है, अभी हम कोई हमें गिफ्ट नहीं लाता शादी में बर्थडे में नहीं, या फिर वैसे कोई मिलने आता है तो हमारे अंदर रह जाती है बात, यहां रख देते हैं खुन्नस की निकालता हूँ आगे जाके बताता हूँ, हाँ टाइम आएगा तो बताऊंगा। तो वैसे ही कृष्ण का वो गुणगान करते जा रहे थे वापस जाते समय, क्या कह रहे थे, क्वाहम दरिद्र पापिया, क्वाहम कृष्ण श्री निकेतना, वो कहते हैं कि क्या मैं दरिद्र पापी व्यक्ति, और कृष्ण कहा लक्ष्मी के पति, एक चीज कृष्ण ने की मेरे साथ द्वारका में, क्या मैं पापी नीच व्यक्ति जब गया उनके महल में उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने मेरा आलिंगन किया और वो लक्ष्मी के पति हैं। तो इस प्रकार से भगवान ये जो सुदामा है ये भावना सोचते हुए वापस गए, और जैसे वापस गए उनके विलेज के पास तो उन्होंने क्या देखा वहां कि वो विलेज उनका विलेज नहीं रहा था, वो क्या बन गया अभी महल आदि है। तो मतलब एक भक्त अपेक्षा नहीं करता भगवान से, वो भगवान की केवल सेवा करना चाहता है। तो आज हमारी चर्चा का यही विषय था कि भगवान हमें प्रेरित करते भगवत गीता से कि भव मत भक्तो, इस संसार में कुछ बनना है तो भगवान का शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करो, उसी में सारी चीजें समाहित है। प्रभुपाद क्या बने, भगवान के शुद्ध भक्त, उसमें क्या है सारी चीजें इंक्लूड है। हाँ तो वैसे ही और भगवान भक्त बनने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, कैसा भक्त बने, हम शुद्ध भक्त अनन्य भावना रख के, और वो अनन्य भावना विकसित होती है जब हम भक्तों के संग में आते हैं, बारंबार श्रवण कीर्तन करते हैं, हाँ शास्त्रों को समझते हैं, सेवा करते हैं, भक्तों के आदेशों का पालन करते हैं, तो ये अनन्य भावना हमारे हृदय में विकसित होती है, और फिर हमारा हृदय केवल एक ही कामना करता है कि मुझे केवल भगवत सेवा करनी है बिना किसी कामना की, फिर कृष्णा हाँ उसका देखभाल करना शुरू करते हैं, उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकारते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी की कोई समीक्षा या क्वेश्चन हो नहीं तो फिर हम दामोदर अष्टकम गाते हैं।